महत्वपूर्ण दलित काव्य प्रकाशन। हिंदी कविता में दलित अभिव्यक्ति की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, माता प्रसाद रचित दिग्विजयी रावण व ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित बस बहुत हो चुका। दोनों पुस्तकों के शीर्षक से ही इस कविता के परंपरा से हटकर भिन्न प्रकार की कविता होने का स्पष्ट संकेत मिल जाता है। श्रीलंका नरेश रावण का चित्रण पूरे उत्तर भारत में कथित हिंदुत्ववादियों द्वारा हीरो नंबर एक की तर्ज पर खलनायक नंबर एक बनाकर सदियों से सामान्य जन की मानसिकता को प्रदूषित किया गया है। पूर्वकाल में भी कुछ ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने रावण की खलनायक छवि को विखंडित कर उसे दक्षिण प्रदेश के आर्य नरेश के रूप में राम की बराबरी के धरातल पर चित्रित किया है। राम को उत्तर क्षेत्र का आर्य नरेश माना गया है। वैसे राम और रावण दोनों के ही चरित्रों में ऐतिहासिक अंश कम और मिथकी अंश अधिक शामिल हो चुका है, अतः इन दोनों चरित्रों की ऐतिहासिक व वस्तुगत समीक्षा तो संभवतः अब संभव ही नहीं रह गई है। ये दोनों चरित्र क्षेत्र विशेष व जाति विशेष के पूजा प्रतीक बन गए हैं, लेकिन फिर भी तार्किक व इतिहास दृष्टि संपन्न लेखक व विज्ञान इन चरित्रों को आस्था व मिथक की धुंध से निकालकर वस्तुगत रूप से समझने का प्रयास करते रहे हैं। और दिग्विजयी रावण में प्रसिद्ध दलित कवि व विद्वान माता प्रसाद ने भी यही किया है। दिग्विजयी रावण प्रबंध काव्य को माता प्रसाद ने चार अध्याय में विभाजित किया है। प्रथम दो अध्यायों में दिग्विजयी रावण व राम और रावण संघर्ष में प्रमुख कथा का अंकन हुआ है व राम का न्याय व रामराज के बाद संक्षिप्त अध्याय इस कथा के महत्व को आधुनिक परिस्थितियों से जोड़ते हैं। मनोगत शीर्षक में कवि ने अपने उन स्रोतों की चर्चा की है जहां से उन्हें अपने इस प्रबंध काव्य को रचने की प्रेरणा मिली। सर्वाधिक महत्व उन्होंने आचार्य चतुर सेन शास्त्री के उपन्यास वयम रक्षामा और मदन मोहन शर्मा शाही रचित तीन खंडों के उपन्यास लंकेश्वर को दिया है। इनके अतिरिक्त वह भूति के उत्तर रामचरित दशरथ जातक कथा जिसमें सीता को राम की बहन बताया गया है। कोष्टक में जातक कथा के इस अंश को सहमत शब्द आश्रमी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अपने सांप्रदायिकता विरोधी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने मात्र से कथित हिंदुत्ववादियों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच खेला। कोष्टक बंद। उड़िया तमिल बंगाली पंजाबी प्राय सभी भारतीय भाषाओं में राम कथा मिलती है। कश्मीरी की प्रकाश रामायण में सीता को रावण की पुत्री भी कहा है। अधिकांश रामायणों में रावण को शिव भक्त कहा है, लेकिन महायानी बौद्ध ग्रंथ लंकावतार सूत्र में रावण को बौद्ध कहा गया है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने भी अपनी पुस्तक रावण और उसकी लंका में रावण को अनार्य राजा बताते हुए गौतम बुद्ध का अनुयायी माना है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक गांव में रावण की पूजा भी की जाती है। स्पष्ट है कि राम और रावण इतिहास प्रभावित चरित्र न रहकर आस्था विश्वास मिथक व व्याख्या आधारित चरित्र बन गए हैं। इन चरित्रों की प्रामाणिकता के लिए अधिकाधिक तार्किकता और तथ्यात्मकता की जरूरत है। कवि माता प्रसाद ने अपने अध्ययन व विद्वत्ता से विभिन्न स्रोतों के आधार पर रावण का जो चरित्र दिग्विजयी रावण में प्रस्तुत किया है वह अंधविश्वास और अदृष्ट आस्था से मुक्त व तार्किकता और तथ्य दृष्टि युक्त है। कवि ने इस रचना को छंदोबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। अपनी छंद योजना व अलंकार चयन में कवि को महती सफलता मिली है। दिग्विजयी रावण का आरंभ एक सामान्य सच्चाई से होता है। रंगवर्ण और जात भेद ने सभी खेल बिगाड़ा है मानव बस एक बराबर सारा जगत हमारा है। कवि ने आर्यों को वर्ण व्यवस्था स्थापित कर जाति पाति भेद पैदा करने का दोषी माना है। जो आर्य इस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। दंड व्यवस्था के लिए मनुस्मृति जैसा घटित कानून ग्रंथ रचा गया। रावण का जन्म विश्रवा और दैत्य जाति पुत्री केकसी के घर हुआ। कुंभकर्ण विभीषण उसके अन्य भाई व वज्रमणि उसकी बहन थे। रावण अत्यंत बलशाली व विद्वान था। उसका विवाह मंदोदरी से हुआ व उसका पुत्र मेघनाथ हुआ। कवि ने रावण के दशमुख होने की वैज्ञानिक व्याख्या की है। रावण को नव नग हीरों की माला भेंट में मिली। उसके हर नग में रावण का मुख दिखाई देने से उसे दशमुख कहा गया है। कवि ने रावण को अत्यंत सच्चरित व्यक्ति व नैतिक मूल्य संपन्न राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि राम ने कपि जनजाति की संस्कृति न समझकर छल से बाली का वध किया और सुग्रीव को अपने साथ मिलाया। इसी प्रकार राम ने रावण के परिवार से भी विभीषण को फोड़ कर साथ मिलाया। रावण की बहन बज्रमणि ने यदि लक्ष्मण पर आसक्त होकर प्रणय निवेदन या उससे विवाह की इच्छा प्रकट की थी तो कौन सा जघन्य अपराध उसने कर दिया था कि लक्ष्मण क्रूरता में उसकी नाक ही काट बैठा। प्रिय बहन के अपमान का बदला लेने के लिए ही रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन उसे राज महिषि की तमाम सुविधाएं दी जिसके लिए स्त्री रक्षक रखे गए और रावण स्वयं उसके पास कभी स्त्री परिचारिकाओं या मंदोदरी के बगैर अकेला नहीं गया। रावण राक्षस जाति की संस्कृति का प्रतिनिधि बलशाली नरेश था, लेकिन उसके साथ युद्ध में राम ने हर तरह से अनैतिक छल का प्रयोग किया, जबकि रावण ने पूरे युद्ध में कहीं छल या अनैतिकता से काम नहीं लिया। रावण ऐसा करता तो उसे हराना असंभव था और आज का मिथिहास और ही तरह रचा गया होता, रामायण की जगह रामायणों की भरमार होती। बहुत दिनों तक राम अयोध्या रहे चलाए अपना राज, कहने को सब सुख समृद्धि थी पर वंचित बहुजन समाज, जो थे सुखी वही कहते थे दुख न यहाँ निशानी है। रामराज्य में दलितों के साथ व्यवहार शंभुक की राम की अपने हाथों हत्या रूप में व स्त्रियों के साथ व्यवहार अपनी ही पत्नी सीता के पूर्णतया निष्कलंक होने पर भी राम द्वारा सत्ता सुख के लिए उसके निष्कासन रूप में मिलता है। रामराज्य विशेषाधिकार संपन्न वर्गों ब्राह्मणों पुरोहितों राजपरिवार श्रेष्ठियों आदि का आदर्श राज्य था, न कि दलितों या स्त्रियों का आदर्श राज्य। वे तो उस राज्य के उत्पीड़ित वर्ग थे जिनकी व्यथा कथा माता प्रसाद ने बड़ी मार्मिकता से दिग्विजयी रावण में कही है। रामराज के बाद शीर्षक से कवि ने आधुनिक काल की विषमता को चित्रित करते हुए जाति धर्म भेद मिटाने का संदेश दिया है। जो लोग निराला के राम की शक्ति पूजा पढ़कर राम के उदात्त चरित्र के बिंब से अभिभूत हैं, उन्हें दिग्विजयी रावण पढ़कर राम के चरित्र के संबंध में पुनः सोचना चाहिए। जातिवादी अहंकार से भरे लोगों को तो दिग्विजयी रावण क्या पसंद आएगी, लेकिन सच में मानवीय संवेदना व साहित्य में उच्च मानवीय मूल्यों की तलाश करने वाले पाठकों के लिए दिग्विजयी रावण एक अमूल्य रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी काव्य रचना बस बहुत हो चुका को दलित चेतना के प्रखर कवि हीराडोम को समर्पित किया है, जिनकी 1914 में सरस्वती में प्रकाशित भोजपुरी कविता से हिंदी में आधुनिक दलित साहित्य का आरंभ माना जाता है। इस संग्रह के छपने से बहुत पहले ही कवि कथाकार व आत्मकथा लेखक के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में काफी प्रतिष्ठित स्थान हासिल कर चुके हैं। सदियों का संताप, उनका काव्य संग्रह व अनेक कहानियां हंस आदि पत्रिकाओं में छपकर काफी चर्चित हुई हैं। जूठन शीर्षक उनकी आत्मकथा अपनी सहजता व मार्मिकता से प्रभावित करती है। बस बहुत हो चुका में कवि की 50 कविताएं संकलित हैं। दलित कविता पर अभिधात्मक या सहज बयान तक सीमित होने का आरोप लगता है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पर यह आरोप सही सिद्ध नहीं होता। निसंदेह दलित जीवन की पीड़ा, उनके दुखों, समाज में उन्हें अपमानित करने के दंश के तीखे व प्रखर चित्र वाल्मीकि की कविता में है, लेकिन यह दुख, यह पीड़ा, यह वेदना, यह दंभ काव्यात्मकता लेकर प्रस्तुत हुआ है। जाहिर है कि ऐसी कविता फूल पत्तियों पंखुड़ियों की सुंदरता की कविता नहीं हो सकती। ऐसी कविता में तो पाश जैसी कविता का अनगढ़ व चुनौतीपूर्ण विद्रोही स्वर ही उभर कर आएगा और यह कविता बहुत सारे सवाल करेगी, जिससे उसके पाठकों में उद्विग्नता, बेचैनी व सवालों की तह तक जाने की जिज्ञासा पैदा हो। जो शायद आप जानते हो कविता में कवि का सवाल, चूहड़े या डोम की आत्मा ब्रह्मकांश क्यों नहीं है, मैं नहीं जानता, शायद आप जानते हो। पूरी ब्राह्मणवादी फिलॉसफी जीव में ब्रह्म का अंश होने की बात कहती है, तो क्या दलित जीव नहीं है? क्या वे जीवों से भी गए गुजरे हैं? जो लोग कविता में कोमलता व सौंदर्य बोध की तलाश करने वाले हैं, वे जरा मुट्ठी भर चावल पूर्वाग्रह रचित होकर पढ़ें तो उन्हें एहसास होगा कि दलित हृदय भी कोमलता व सौंदर्य जीवन में उतना ही चाहता है जितना कोई तथाकथित उच्च जाति का हृदय। कवि हृदय का आर्तनाद देखें, सख्त हाथों पर पड़ी खरोंचे रिश्ते लहू के साथ विरासत में दे गई है ढेर सारी यातनाएं, जो उगानी है मुझे इस धरती पर हरी नीले लाल फूलों में। वाल्मीकि ने अपनी कविता में कहीं कहीं व्यंग की धार का भी प्रयोग किया है, जो उनकी कविता को शक्ति देता है। जैसे कविता सिर्फ कविता नहीं होती। कविता में संग्रह की शीर्षक कविता एक आह्वान है कि चुप रहना शोषण को जारी रहने देना है। बस बहुत हो चुका चुप रहना, निरर्थक पड़े पत्थर अब काम आएंगे संतप्त जनों के। यह संघर्ष खाली शब्दों से नहीं होगा, कवि यह भी स्पष्ट कर देता है। वे नहीं जानते शीर्षक लंबी कविता में कवि संघर्ष को और अधिक स्पष्ट कर देता है। संकलन की अंतिम कविता वह दिन कब आएगा में कवि ने एक बहुत वाजिब सवाल पूछा है। वह दिन कब आएगा जब बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगिन भी नहीं जनेगी भंगी, ऐसा हो तब तब नहीं चुभेंगे जातीय दीनता के दंश, और तब शंभुक तपस्या करता नहीं मारा जाएगा और न एकलव्य शिक्षा ग्रहण करता अंगूठा कटवाएगा। बस बहुत हो चुका एक सोद्देश्य रचना है, वही साहित्य सत्साहित्य है जो समाज में उत्पीड़न समाप्त करने का संदेश देकर मानवीय समाज के निर्माण का संदेश दे। ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता यही संदेश देती है, अतः स्वागत योग्य है।